5 अक्टूबर दिन बुधवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति जारी। पूर्व जनरल ने कहा स्ट्राइक के सबूत जारी करना जरूरी नहीं।
क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है कई दफा हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मूवमेंट था और एक अटैक के बाद था। कोई जरूरत नहीं है आर्मी की तरफ से हमें किसी किस्म का प्रूफ देने की।
दादरी कांड के एक अभियुक्त की अस्पताल में मौत। अरब बसंत के 5 साल बाद क्या हाल है आज के लीबिया का, जानेंगे दुनिया जहान में।
कई सौ खानदान हैं जो इस वक्त सड़ा हुआ अनाज से काम चला रहे हैं, उनके पास ताज़ा पीने को पानी नहीं है। जो जनरल साहब हैं उनका कहना है कि इसी सिविलियन पॉपुलेशन में शूरा काउंसिल फॉर बेंगाज़ी रेजिस्टेंस जो एक किस्म का आतंकवादी ग्रुप है वो भी वहीं मौजूद है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक CCS बुलाई थी। बैठक के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर के हालात से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। इस बैठक में सरकार के बड़े मंत्री मौजूद थे। बैठक में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ आंतरिक इलाकों में हालात के बारे में भी जानकारी दी गई। दुनिया की सबसे छोटी मशीनों के विकास के लिए साल 2016 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जैंग पेरे सोवाश, सर जे फ्रेजर स्टॉडॉट, बेनार्ड फेरिंगा को मिला है। वैज्ञानिकों ने जो मशीन ईजाद की है वो बाल से भी 1000 गुना पतली है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसके जरिए स्मार्ट मशीनों को तैयार किया जा सकता है। पुरस्कार इस कामयाबी को बयां करता है कि आने वाले वक्त में मॉलिक्यूल को जोड़कर कार की मोटर से लेकर छोटी मांसपेशियां तक बनाई जा सकती हैं। पिछले एक दशक का सबसे शक्तिशाली कैरिबियाई तूफान मैथ्यू हैती में फसलों और घरों को बर्बाद करता हुआ बहामास और फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। एहतियातन फ्लोरिडा और कैरोलिना से सैकड़ों लोगों को निकाला जा रहा है। तेज हवाओं के साथ आए इस तूफान की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटे है। जानकारी के मुताबिक इस तूफान से हैती में 2 लोगों और पड़ोसी डोमिनिक गणराज्य में 4 लोगों की मौत हो गई है। हैती में 6 साल पहले आए विनाशकारी भूकंप के बाद से अब भी हजारों लोग टेंट में रह रहे हैं। हैती में सहायता कार्यकर्ता लॉरा सेविल कहती हैं कि लाडिक पुल के टूटने से हैती के साउथ पेनिनसुला में रहना राहत कार्य बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया,
We have staff there already, so not only has the bridge gone down, but in one area we don't have telephone access to them.
हमारे पास कर्मचारी हैं जो पुल ठीक करने में लगे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में फोन काम नहीं कर रहे। मोबाइल नेटवर्क भी धीरे धीरे काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अपने कर्मचारियों के संपर्क में नहीं हैं। पुल धंस रहा है जिसकी वजह से लोगों तक बाल्टियां व अन्य सामान नहीं पहुँच पा रहा है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने मार्शल आइलैंड के उस मामले को खारिज कर दिया है जिसमें उसने ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को रोकने के प्रयास की कथित विफलता के आरोप लगाए थे। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मार्शल आइलैंड के वकीलों की दलील थी कि भले ही भारत और पाकिस्तान परमाणु अप्रसार की संधि पर हस्ताक्षर न कर रहे हों, फिर भी उन पर परमाणु शक्तियों के निरस्त्रीकरण करने का दायित्व है। ब्रसल्स में यूरोपीय संघ की बैठक में अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता राशि को लेकर यूरोपीय संघ की विदेश नीति इस बात का खंडन कर चुकी है कि यूरोपीय संघ ने शरणार्थियों को वापस लेने की शर्त पर सहायता राशि दी है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। भारत सरकार के कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर चर्चा अभी भी गर्म है। जहां कुछ राजनीतिक दलों ने अब खुलकर कार्रवाई के सबूत मांगे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने उस बयान पर टिकी हुई है जिसमें उसने अपने कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया था। बुधवार दोपहर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई जिसमें सुरक्षा मामलों पर विशेष चर्चा हुई। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी पर हुए चरमपंथी हमले और फिर सर्जिकल स्ट्राइक के दावों के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट मीटिंगों का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी दिल्ली में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। समाचार एजेंसियों के मुताबिक इस बैठक में पिछले 1-2 दिनों में कथित सर्जिकल स्ट्राइक के दावों का सबूत जनता के समक्ष पेश करने की मांगों पर भी चर्चा हुई है। कुछ अपुष्ट खबरों में इस तरह की भी बात बताई जा रही है कि इस बैठक में भारतीय सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग शामिल थे और उनसे भी राय ली गई होगी। हालांकि अभी फैसला क्या हुआ है इस पर हर तरफ चुप्पी है, क्योंकि अगर खबरों की मानी जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी और मंत्रियों को खास निर्देश दिए हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक मामले में मीडिया वगैरह से वही लोग बात करेंगे जिन्हें सरकार या पार्टी की तरफ से ये अधिकार दिए गए हैं। कल शाम को सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने कहा था कि यह ऐसा पहला ऑपरेशन नहीं था। कांग्रेस सरकार ने भी 2011 से 2014 के बीच 3 सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, लेकिन कांग्रेस ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का इशारा किया था। बहरहाल इस तरह की मांगे और उससे जुड़े हुए मामले सोशल मीडिया पर भी आज दिन भर ट्रेंड करते रहे। वैसे कैबिनेट की इस अहम बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे।
ये थी नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब चूंकि बात कथित सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाणों को सार्वजनिक करने की हो रही है, तो बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने ही भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल अफसर करीम से बात की और पूछा कि इस तरह की मांग कितनी सही और कितनी गलत है।
मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एक किस्म की लड़ाई है और आर्मी को इसमें शामिल करना बिल्कुल गलत है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये अटैक हुए हैं और कहाँ हुए हैं, लेकिन इसमें प्रूव करने का क्या मतलब है? अगर आप कोई वीडियो भी दिखाएंगे उसको भी कोई कह देगा कि ये फेक है, तो देयर इज नो लिमिट टू ऑल दिस। आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि इसमें ये गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन ब्लेम कर रहा है और गवर्नमेंट अपना प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा अटैक किया। तो ये पॉलिटिकल एरेना में है, इसको वहीं रहना चाहिए और कोई प्रूव या उसके बारे में आर्मी से पूछना बिल्कुल गलत होगा।
आपने तो बहुत टैक्टिकल चीजें देखी हैं, उन पर आपने फैसले लिए होंगे। क्या इस तरह की अगर डिमांड उठती है कि अगर कोई कथित प्रूफ है भी इंडियन आर्मी के या इंडियन गवर्नमेंट के पास, उसको पब्लिक किया जाने की जो डिमांड है, इस तरह की मांगों से जो आर्मी है या जो फोर्सेज है उनका मोराल, उनकी मोराल पर क्या फर्क पड़ता होगा?
नहीं, आर्मी के ऊपर ये फर्क पड़ता है कि लोग आर्मी को डाउट नहीं कर रहे हैं, वो जानते हैं, वो पॉलिटिशियंस को डाउट कर रहे हैं, लेकिन उसमें आर्मी के नाम भी आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये इसमें कोई खास बात हुई नहीं है, ये क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है कई दफा हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मूवमेंट था और एक अटैक के बाद था, और लेकिन कोई जरूरत नहीं है आर्मी की तरफ से हमें किसी किस्म का प्रूफ देने की।
भारतीय सरकार ने दावा किया है सर्जिकल स्ट्राइक का, और अब विपक्ष जो है यानी कांग्रेस ने ये कहा है कि उन्होंने भी अपनी सरकार के दौरान 3 दफा इस तरह के कथित सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। क्या एक तरह से ये गेम वाकई में पॉलिटिकल एरिना जैसा आप कह रहे हैं उसे खेला जा रहा है, या वाकई में अब एक तरह से पेंडोरास बॉक्स खुल गया है कि सभी सर्जिकल स्ट्राइक जो अलेज्ड हैं, कथित हैं, वो सब बाहर पब्लिक डोमेन में आएंगे?
देखिए, बात यह है, क्रॉस बॉर्डर जो आप LOC पे देखते हैं तो रोज आर्मी इधर उधर क्रॉस करती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोई डीप अटैक और किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अटैक जब होता है वो अलग चीज है, और छोटे मोटे अटैक पहले भी हो चुके हैं और दोनों तरफ होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल एरेना में आ गया है और यही बात गलत है। और आर्मी से, आर्मी की तो खैर इसमें शामिल नहीं है, गवर्नमेंट को भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है।
जो एक फिनोमेना है जो इधर ऑफ लेट देखा गया है कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हो रही है, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स पर, इस तरह के LOC के मसलों पर, क्या आपको लगता है कि ये जो भारत पाक के रिश्ते हैं उन पर कैसा असर आप देख रहे हैं इन तमाम चेस थम्पिंग के बाद?
देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये नाम जो रखा है वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजी में आता है, सर्जिकल स्ट्राइक इसका नाम रखना कोई जरूरी नहीं था, तो क्रॉस बॉर्डर एक्शन है, लेकिन वो चीज अलग है। ये तो आप कह रहे हैं जो रिश्ते जो है, रिश्ते वही के वही रहेंगे।
ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल अफसर करीम।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
दादरी के बिसाहड़ा गांव में पिछले साल हुई मोहम्मद अखलाक की हत्या मामले के एक अभियुक्त रवि की अस्पताल में मौत के बाद गांव में फिर से तनाव है। गांव वालों का आरोप है कि जेल में प्रताड़ना के कारण रवि की मौत हुई है, और जब तक जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और जॉन मोहम्मदी की गिरफ्तारी नहीं होती, वो रवि का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बिसाहड़ा गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, और जानकारी के साथ समीर आजमत मिश्र।
बिसाहड़ा गांव के बहुचर्चित अखलाक हत्याकांड के एक अभियुक्त रवि उर्फ रॉविन की मौत के बाद गांव वालों की नाराजगी सड़क पर आ गई है। हालांकि बिसाहड़ा गांव में ही मौजूद बिसरक के पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश का कहना है कि वहां किसी तरह का तनाव नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान वहां तैनात किए गए हैं।
बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी आएगी आफ्टर पोस्टमार्टम,
लेकिन बिसाहड़ा गांव के कुछ लोगों ने मंगलवार देर रात मंदिर में पंचायत करके घोषणा की कि जेलर और गो हत्या के कथित अभियुक्त जान मोहम्मद की गिरफ्तारी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी को लेकर कुछ महिलाएं पिछले 5 दिनों से ही बिसाहड़ा गाँव में अनशन पर बैठी है। धरने और पंचायत होने की पुष्टि सीओ राकेश ने भी की है।
इस समय तो नहीं बैठी हूँ, इस समय वो सारे धरने वाले डाइवर्ट उधर हो गए हैं कि रावण की बारी आ रही है, तो उनके घर पे जो दाग वाग लगाते हैं उसमें लगे हुए। पंचायत में गांव के लोगों का मांग था कि मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है गौ वध अधिनियम और गाँव स्लॉटर एक्ट के तहत, उसमें जान मोहम्मद की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मांग लेकर गाँव में वार्ता हुई, इसी को लेकर महिलाएं बैठी हुई थी।
अखलाक हत्याकांड के कई अभियुक्त लुक्सर जिला जेल में बंद हैं। जेल अधिकारियों का कहना है कि रॉबिन ने पिछले दिनों पेट दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद नोएडा के जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दिल्ली के LNJP अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ देर शाम उनकी मौत हो गई। लेकिन परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि रॉबिन के साथ जेल में मारपीट की गई थी, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हुई। इन अभियुक्तों के वकील राम शरण नागर कहते हैं,
एक वर्ष से लगातार मुकदमे में बंद हैं लोग। अब जैसे रॉबिन उर्फ रवि जो है बीमार थे, इसकी पहले शायद कोई मारपीट जेल में हुई, ऐसा कुछ मैंने इनके पेरेंट्स ने मुझे बताया था
जी।
तो मैंने एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी थी 30/9/2016 FTC कोर्ट में, जो हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट है, एडिशनल सेशन जज कोर्ट है, उन्होंने वो एप्लीकेशन पे ऑर्डर भी पास कर दिया था भाई जेल सुपरिंटेंडेंट जो वो एज पर लॉ काम करे। और उन्होंने जहां तक मैं समझ रहा हूँ अपने जो जिला कारागार का अस्पताल हो रहा है उसमें ट्रीटमेंट करा दिया होगा चालू, वहाँ कोई सुविधाएं होती नहीं है जिला कारागार में।
फिलहाल रॉबिन की मौत के बाद पूरा जमावड़ा उनके घर के आसपास हो गया है। गांव के लोगों और रवि के परिवार वालों की मांग है कि उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा मिले, जेलर के खिलाफ कार्रवाई हो और गोकशी के कथित आरोप में अखलाक के भाई जान मोहम्मद को गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में जेल में बंद अन्य अभियुक्तों ने भी रॉबिन के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। राम शरण नागर कहते हैं,
आज हमने अपनी कोर्ट में इस बात का पिटीशन फाइल किया था, अब जो लोग 14 बने और जो कि ये सब लोग एक ही गांव के हैं, लगभग एक ही परिवार के हैं, तो इनको अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 2-3 घंटे का पुलिस कस्टडी पैरोल दे दिया जाए, तो लेकिन माननीय न्यायालय ने वो हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया, वो खारिज कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ प्रशासनिक मसला भी इन्वॉल्व है।
पोस्टमार्टम के बाद रवि का शव पहले जेल में लाया जाएगा और उसके बाद उनके गांव बिसाहड़ा में, लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर गांव वालों और प्रशासन के बीच कशमकश जारी है।
मोहम्मद अखलाक हत्या मामले के अभियुक्त की जेल में मौत।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषय। अफगानिस्तान को दी जा रही अंतर्राष्ट्रीय मदद में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी किए जाने को लेकर यूरोपीय संघ ब्रसेल्स में कई देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक करा रहा है। संघ ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मदद में ये बढ़ोतरी यूरोप पहुंच रहे अफगान शरणार्थियों को वापस लिए जाने की शर्त पर की जा रही है। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनी ने सख्ती के साथ उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि यूरोपीय संघ अफगानिस्तान की सहायता राशि वहां से आ रहे शरणार्थियों को वापस लेने की शर्त पर बढ़ाना चाहता है। आज की बैठक में शरणार्थी कोई अकेला मसला नहीं है। हमारी ओर से विकास के लिए दी जा रही मदद और जो हम शरणार्थियों के लिए कर रहे हैं उसमें आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधि इधर इस मकसद से जुटे हैं कि अफगानिस्तान को वहां के नागरिकों के भले के लिए सहयोग पहुंचाना है, साथ ही इसका मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनी के शब्द। यूरोपीय संघ की ओर से आयोजित की गई इस बैठक में 70 से अधिक देश शामिल हैं। अफगानिस्तान को दी जाने वाली राहत राशि में 2020 तक के लिए हर साल $3 अरब का इजाफा करने की योजना है। यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि फ्रांज माइकल मेलबिन ने बताया कि सहायता राशि में बढ़ोतरी कर अफगानिस्तान को विकास और शांति स्थापित करने के लिए 4 और साल दिए जा रहे हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यूरोपीय संघ अफगानिस्तान से उम्मीद करता है कि वह यूरोप में शरण पाने में नाकाम हुए शरणार्थियों को वापस जाने में मदद करेगा। उधर अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने तालिबानी चरमपंथियों से अपील की है कि वे अफगानिस्तान सरकार के साथ शांति बहाल करने में मदद करें। बैठक में जुटे प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सलाउद्दीन रब्बानी ने कहा है कि यह बैठक अफगानिस्तान की सरकार के पास देश की समस्याओं पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का एक मौका है। यह सम्मेलन अफगान सरकार के लिए अपने विकास और सुधार कार्यक्रमों के नजरिए और उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखने का एक मौका है। ठीक इसी तरह यह एक मौका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी है कि वे इसके जरिए अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया और विकास के प्रयासों को राजनीतिक और वित्तीय मदद पहुंचाने के अपने वादे को पूरा करें। हम एक शांत और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी के शब्द। अफगानिस्तान चरमपंथी तालिबान से जूझता रहा है और विदेशी मदद पर निर्भर है। इससे पहले 2012 में टोक्यो में इसी मसले पर हुई बैठक में अफगानिस्तान को हर साल $4 अरब की मदद किया जाना तय हुआ था।
अफगानिस्तान को मदद दिए जाने के मुद्दे पर ब्रसल्स में बैठक। ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। लीबिया में अरब वसंत ने कर्नल गद्दाफी को सत्ता से तो हटा दिया, लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए इस क्रांति ने सिर उठाया था उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। आज जब इस घटना को 5 साल पूरे होने को हैं तो हालात ये हैं कि कभी वैभवशाली रहे लीबिया के ही बेनगाजी शहर में फंसे लोग भुखमरी के कगार पर हैं। राजधानी त्रिपोली जैसे शहरों में कुछ स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अलग अलग गुटों में बटा देश हर तरफ से बदहाल और परेशान नजर आता है। अरब वसंत के बाद लीबिया कहां से कहां पहुंचा, दुनिया जहान में निखिल रंजन ने यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान। अरब वसंत की आंधी में जिन देशों की सत्ता पलटी उनमें लीबिया भी था। वो लीबिया जिसके लिए 4 दशक तक सरकार, न्याय, प्रशासन और व्यवस्था का बस एक ही नाम था, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। ताकत के दम पर गद्दाफी ने देसी कबीलों को काबू में रखा और 40 साल से ज्यादा के समय में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नाफरमानी के लिए सिर उठा सके। कर्नल ने लीबिया को बदनाम हो चुके इद्रिस के शासन से 1969 में मुक्ति तो दिला दी, लेकिन उसके बाद ये देश बस गद्दाफी का होकर रह गया। मध्य पूर्व के जानकार अली खान महमूदाबाद।
गद्दाफी का दौर देखा जाए तो उसके 3 हिस्से में उसको बांटना पड़ेगा, 70 का दहा, 80 का दहा और फिर 90 का दहा। शुरू में तेल की वजह से और गद्दाफी की खुद की पॉलिसियों की वजह से गद्दाफी जो है वहाँ के कबाइल जो थे, कबीले थे, और जो वहाँ के दूसरे ग्रुप्स थे उनसे वो काफी बाहमी ताबुन करता था, उनकी मदद करता था, पैसे भी बांटता था जो तेल के जरिए पैसे आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे रवैया बदला और 80s में उन्होंने एक सख्ती अख्तियार करना शुरू की और उसके जरिए अफ्रीका में अपना जोर बढ़ाने की कोशिश की। वो ऐसे के दूसरे अफ्रीकन मुल्क जो हैं उनमें उन्होंने पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू करने की कोशिश की, अपोजिशन ग्रुप्स को पैसे दिए, और फिर 90s में वो बाकायदा जो है एक तरह से 90s और 2000s में 2011 तक के सैफ गद्दाफी जो गद्दाफी के बेटे थे, गद्दाफी के दूसरे खानदान वाले जो थे, उनके कबीले के लोग जो थे, उन्होंने एक तरह से स्टेट रिसोर्सेज जो थी उनको आपस में बांटी, बहुत पैसा बनाया।
गद्दाफी के शासन में आवाम के पास रोटी, कपड़ा और मकान की कोई दिक्कत नहीं थी। बुनियादी सुविधाओं को जनता तक मुफ्त पहुंचाने में कर्नल ने खूब दिलचस्पी दिखाई थी।
रोटी, कपड़ा, मकान जो हम लोग हिंदुस्तान में जिसका अक्सर जिक्र करते हैं, वो गद्दाफी के यहाँ काफी अच्छा उनका बंदोबस्त था। लेकिन मसला ये है कि कोई भी चीज मुफ्त में कोई गवर्नमेंट नहीं देती, और खासकर डिक्टेटरशिप। कभी कभी लोगों को डिक्टेटरशिप के तहत जो हुकूमत होती है वो पसंद आती है, इसलिए क्योंकि अक्सर हुकूमत बड़ी एफिशिएंट होती है, कारगर होती है, और इसीलिए एक बिल्कुल सही है कि लीबिया में एक ऐसा दौर गुजरा था जो उनके हुकूमत में बड़ी अमन व आश्ती थी और लोगों को सुकून था।
अरब वसंत के साथ जब विद्रोहियों के पैर मजबूत हुए तो बहुतों को लगा कि देश में एक व्यक्ति एक परिवार का शासन खत्म होगा, जमहूरियत आएगी। गद्दाफी की मौत के साथ उनका शासन तो चला गया, लेकिन जिस देश ने 40 साल तक सरकार बदलते नहीं देखा, वो 5 सालों में ही 3 चुनाव, 5 प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय दखलंदाजी, आईएस का उभार और अलकायदा की मजबूती देख चुका है। देश में इस समय 1700 से ज्यादा कबीले और लड़ाकों के दल सक्रिय हैं और जिसके हाथ में बंदूक है वही सरकार है। विश्व मामलों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सीनियर फेलो फजल रहमान,
लीबिया में रिवॉल्यूशन के बाद पहली जो चीज हुई वो रीजनल डिवाइड हुआ, ईस्ट एंड वेस्ट, फिर एक डेढ़ साल के अंदर वो सेकुलरिस्ट और इस्लामिस्ट, फिर ट्राइबल डिवाइड शुरू हुआ जो कि बहुत ही इंटेंस था वहां की सोसाइटी में, लेकिन उसका जो अपीयरेंस हुआ, जो उसका जो कंसोलिडेशन हुआ, उसने पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को किल कर दिया। चौथी एक जो डिवाइड आई वहां पे गद्दाफी के लॉयलिस्ट और दूसरी जो इंडिपेंडेंट जो वारलॉर्ड्स थे, जिसको कभी ना कभी लीबिया के जो गद्दाफी कर्नल साहब थे वो आर्मी की शक्ल देते थे वहां की। तो ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं, जो सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इतनी बुरी तरह एक्टिव हैं आज के लीबिया में और वो अपने आप में एक डिवाइसिव फोर्स बन गए हैं कि उसके सामने जितनी एफर्ट्स हैं, नेशनल एफर्ट्स, रीजनल एफर्ट्स, ग्लोबल एफर्ट्स, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही है।
कुछ ही दशक पहले उत्तर अफ्रीका में वैभव का प्रतीक रहे लीबिया में बेनगाजी शहर के 130 से ज्यादा परिवार 2 साल से बिना बिजली के रह रहे हैं। डॉक्टर और दवा नहीं, खाना मिलता है तो बासी और खराब, वो भी पूरा नहीं। हालात ये हैं कि कई लोग अपने बच्चों को दूध कहकर पानी पिलाने पर मजबूर हैं। इन सब के ऊपर जान जाने का जोखिम है और देश छोड़कर जाना चाहें तो उसकी भी इजाजत नहीं। अली खान, महमूदाबाद।
बेनगाजी में गनफूदा एक इलाका है, उसमें कई 100 खानदान जो हैं वो फंसे हुए हैं। लिबियन नेशनल आर्मी और जनरल खलीफा हफ्तार बिल्कुल सब उसके रास्ते रोके हुए हैं और जो खबरें मिलने में आ रही हैं, कई 100 खानदान हैं जो उस वक्त सड़ा हुआ खाना और सड़ा हुआ अनाज से काम चला रहे हैं, उनके पास ताज़ा पीने को पानी नहीं है। मसला ये है कि जो जनरल साहब हैं उनका कहना है कि इसी सिविलियन पॉपुलेशन में द शूरा काउंसिल फॉर बेनगाजी रेजिस्टेंस, जो एक किस्म का आतंकवादी ग्रुप है, वो भी वहीं मौजूद हैं, लिहाजा जनरल की निगाह में कोई भी बेनगाजी में मासूम नहीं है।
रणनीतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अहम बेनगाजी का दर्जा लीबिया में राजधानी त्रिपोली जितना ही है। लीबिया में जब विद्रोहियों की मुहिम तेज हुई तो उन्होंने इसी शहर को अपना गढ़ बनाया, तब से ही ये शहर विद्रोहियों और सरकारी सेना के जंग की आग में झुलस रहा है। फजल रहमान,
बेनगाजी शुरू से ही वो ओरिजिन पॉइंट है, जो अपराइजिंग शुरू हुई तो बेनगाजी में शुरू हुई। पिछले 5 साल में उस एरिया पे सबका फोकस कभी ISIS का रहा, कभी वहां पे शूरा काउंसिल थी, कभी इस्लामिस्ट थे और उसके बाद ये शहर लाइमलाइट नुसरत आया जब वहां पे कर्नल हफ्तर, जो एक जमाने में गद्दाफी के राइट हैंड थे, उनका गद्दाफी से कुछ मामला, कुछ डिफरेंसेस आ गए, फिर वो अमरीका चले गए, फिर वो CIA के पेरोल पे रहे जैसा कि कहा जाता है, फिर आने के बाद उन्होंने एक पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को चैलेंज किया। न वो वहाँ की आर्मी को मानते हैं, न वो गवर्नमेंट को मानते हैं। तो इस वक्त जो फाइट है बेनगाजी में वो बिल्कुल बहुत ही ट्रायंगुलर फाइट है। एक तरफ वहाँ की जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है, जिसको हम कहते हैं UN सपोर्टेड गवर्नमेंट, वो चाहती है वहाँ पे अपने पावर को एस्टैब्लिश करना। दूसरी तरफ वहाँ पे कर्नल हफ्तर साहब पूरा एंटी इस्लामिस्ट जो फोकस है वो बेनगाजी पे है। और तीसरा, बेनगाजी के आसपास की इस्लामिस्ट फोर्सेज हैं। इस्लामिस्ट और हफ्तर के बीच ये तकरीबन 2 साल से बहुत ही इंटेंस फाइटिंग चल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा मेजर फोकस में है। और वहां पे हालत यह है कि उन्होंने सारी चीजों को ब्लॉक कर रखा है।
लीबिया में अशांति फैली तो ज्यादातर प्रवासियों ने देश छोड़ना ही बेहतर समझा। कुछ लोगों ने भागकर आसपास के दूसरे देशों में भी शरण ली, लेकिन अब बहुत से लोग वापस आ गए हैं और तेल का कारोबार एक बार फिर तेज हो गया है। राजधानी त्रिपोली और इस जैसे कुछ इलाकों में शांति है और दशकों से वहां रह रहे प्रवासी भी वापस लौट आए हैं। दिल्ली के मोहम्मद सलीम करीब 35 साल लीबिया में रहे हैं।
वहां पे सिर्फ कैश का प्रॉब्लम था पहले, लेकिन अभी जो हमारी जिलेतन कंपनी है उनको कैश मिलता है, वहाँ सैलरी बराबर मिलती है। अभी भी वहाँ पे 200-250 आदमी है इंडियन। SSB कंपनी है, उसमें भी 500-600 आदमी काम करते हैं। सीमेंट प्लांट है वहाँ भी, नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ ठीक है। ये तो थोड़ा बहुत सीरत है ना, सीरत एक जगह है त्रिपोली से 450 किलोमीटर, वहाँ इनसाइड थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम पहले उस टाइम जब मैं आया था, अभी तो वहाँ थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है।
लीबिया की स्थिति उन देशों की तुलना में आर्थिक रूप से अच्छी रही है जहाँ अरब वसंत ने सिर उठाया। इसके अलावा यहाँ की आबादी भी कम है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि गद्दाफी का शासन अपने आखिरी दौर में काफी बदनाम हो चुका था। फजल रहमान,
गद्दाफी साहब की पूरी प्राइवेट आर्मी थी, उनका सब कुछ अपना पर्सनल था,
جو چیزیں ہوتی ہیں ڈکٹیٹرشپ کا جو مزاج ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے پولیٹیکل اپوزیشن برداشت نہیں ہے, تو اس چیز کو بھی نہیں برداشت کرتے تھے, تو کہیں نہ کہیں ان کی کروئلٹی بھی تھی. انہوں نے پورے جیل کو بمبارڈ کرایا.
لیبیا نے انتراشٹریہ طاقتوں کی دخل اندازی بھی خوب جھیلی ہے. گدافی اپنے شاسن کے آخری دشک میں انتراشٹریہ استر پر کافی سکریہ ہو گئے تھے اور کئی دیشوں سے انہوں نے سہیوگ کے لیے قرار کیے. تیل اور شدھ پینے لائق پانی سے لبالب لیبیا کے پاس آج بھی بہت کچھ ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے.
لیبیا میں جو انٹروینشن ہوا وہ نیٹو کے تحت ہوا. کبھی امریکہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس پورے کے پورے انٹروینشن کو بلیم کیا جائے, لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ فرانس اور برٹین کا ہے. فرانس اور برٹین کے اتنے زیادہ اکنامک انٹرسٹ وہاں پہ انوالو ہیں, اٹلی کا اکنامک انٹرسٹ وہاں انوالو ہے, ترکی کا وہاں اکنامک انٹرسٹ انوالو ہے, تو ان کو یہ لگا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں گدافی کے جانے کے بعد کوئی بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بہت ہی ویک ہوگی. حالانکہ گدافی جو ہے وہ بھی ان کے پچھلے 7-8 سال سے ان کی گڈ بک میں آ گئے تھے, جب سے انہوں نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ابینڈن کیا, پھر وہ فرانس گئے, اٹلی گئے وہ. لیکن ناٹو کی جو پالیسی تھی ان کو لگا کہ پوسٹ گدافی جو ہمارا انٹرونشن ہوگا کہ کہیں نہ کہیں بہتر طریقے سے سرو ہوگا. گدافی کے ایکسپائر ہونے کے تقریباً سال بربادی فرنچ گورنمنٹ نے بہت ساری ڈیل سائن کی, اٹلی نے سائن کی بہت ساری ڈیل گدافی کے جانے کے بعد. کیمرون اور یہ فرنچ پریزیڈنٹ دے ویئر دا فرسٹ ٹو وزٹ لیبیا, تو اس سے ہم اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویسٹرن پاور کا کس حد تک انٹرسٹ وہاں پہ رہا ہے. لیبیا کا پانی مانا جاتا ہے کہ بہت ہی صاف ستھرا, بہت ہی اچھا, بہت ہی فریش واٹر ہوتا ہے, اس پہ بھی ویسٹرن کنٹریز کی نظر ہے.
بیالیس سال کی تانا شاہی, انتراشٹریہ چرم پنتھی سنگٹھنوں اور دنیا کے طاقتور دیشوں کی دخل اندازی اور سب کے اوپر ہتھیار بند قبیلوں کے ہاتھ میں ٹکڑے ٹکڑے بٹا دیش, لیبیا کی حالت کو بیان کرنے کے لیے شاید اتنا ہی کافی ہوتا اگر عرب وسنت نہ ہوتا. نکھل رنجن, بی بی سی, دلی.
عرب, آئیے دیکھتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. رجت چاننا کے ساتھ.
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں رجت چاننا. سب سے پہلے بات کبڈی کی. بھارت میں شکروار سے شروع ہونے والے کبڈی ورلڈ کپ میں پاکستان کے کھیلنے پر روک لگا دی گئی ہے. اس ٹورنامنٹ میں 12 دیش حصہ لینے والے ہیں, لیکن پاکستان کو اس میں بھاگ لینے سے روک دیا گیا ہے. بھارت پاکستان کے بیچ حالیہ تناؤ کے مد نظر انتراشٹریہ کبڈی سنگھ نے یہ فیصلہ لیا ہے. انتراشٹریہ کبڈی سنگھ کے اس فیصلے پر ناراضگی جتاتے ہوئے پاکستان نے کہا کہ ان کے ساتھ بھید بھاؤ ہوا ہے. اگر دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ کے مد نظر یہ فیصلہ ہوا ہے تو دونوں ہی دیشوں کو باہر کیا جانا چاہیے تھا. IKF چیف دیوراج چترویدی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ پرتیوگتا کرنے کے لیے سمے ٹھیک نہیں ہے, اس لیے اسے پرتیوگتا سے دوری رکھا جائے. ادھر کرکٹ میں بھارت کے وکٹ کیپر بلے باز ردھیمان ساہا اور بلے باز روہت شرما نے ICC کی ٹیسٹ بلے بازی رینکنگ میں سدھار کیا ہے. شاندار پاریوں کی بدولت ساہا کو 18 اور روہت شرما کو 14 پائیدان کا فائدہ ہوا ہے. رینکنگ کے مطابق ساہا 18 استھان کے فائدے کے ساتھ 56ویں استھان پر ہیں, جبکہ روہت 14 استھان کی اچھال کے بعد 38ویں پائیدان پر پہنچ گئے ہیں. ان دونوں کھلاڑیوں کو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں اچھا کھیلنے سے فائدہ ملا. ساہا نے کولکتہ ٹیسٹ کی پہلی پاری میں 54 اور دوسری پاری میں 58 رن کی پاری کھیلی تھی. وہیں روہت شرما نے دوسری پاری میں 82 رن بنائے تھے. ان کی شاندار بلے بازی نے بھارت کو نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ جیتنے میں مدد کی تھی. ساہا اپنے اب تک کے پردرشن سے کافی خوش ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ یہی پردرشن کو آخری ٹیسٹ میچ میں بھی جاری رکھنا چاہیں گے.
نہیں, میں صرف سوچ رہا تھا ایک دم بہت سمپل سی بات کی جو اچھے بال ہوگا اس کو ریسپیکٹ دینا ہے, اور جو اس بیچ میں روٹیٹ کریں گے سنگلز, اور جو خراب بال ہوگا اس کو باؤنڈریز میں کنورٹ کرنا ہے. صرف یہ 3 چیز سوچا. بٹ جو میچ ہم لوگ آلریڈی جیت چکے ہیں 3rd میچ میں, ویسے ہی کوشش کریں گے کہ جیسے ادھر بیٹنگ میں اور بولنگ میں اوور آل ٹیم پرفارمنس کیے تھے اور ویل سپورٹڈ بائی فیلڈنگ, تو وہی کوشش کریں گے کہ نیکسٹ میچ میں بھی کیری کریں.
اور ہاکی میں سنگاپور میں 29 اکتوبر سے 5 نومبر تک ہونے والی ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے لیے بھارتی مہیلا ہاکی ٹیم کی کمان اتراکھنڈ کی وندنا کٹاریا کو سونپی گئی ہے. ہاکی انڈیا نے پرتیوگتا کے لیے 18 سدسیہ ٹیم کی گھوشنا کی ہے, جو 5 دیشوں کے بیچ کھیلے جانے والی اس پرتیوگتا میں حصہ لے گی.
اور اب چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر.
بی بی سی سماچار. پردھان منتری نریندر مودی نے نینترن ریکھا کے پار چرمپنتھی ٹھکانوں پر سرجیکل سٹرائک اور کشمیر کے حالات پر چرچا کے لیے سرکشا معاملوں پر کیبنٹ کی سمیتی کی بیٹھک کی. دنیا کی سب سے چھوٹی مشینوں کے وکاس کے لیے سال 2016 کا کیمسٹری کا نوبل پرسکار 3 ویگیانکوں کو ملا. ویگیانکوں نے جو مشین ایجاد کی ہے وہ بال سے بھی 1000 گنا پتلی ہے. पिछले एक दशक का सबसे शक्तिशाली कैरिबियाई तूफान मैथ्यू हैती में फसलों और घरों को बर्बाद करता हुआ बहामाज और फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफान की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटे है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की राजेश चौहान ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।